लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम युवा और विकास। लेखिका और प्रस्तुतकर्ता है नूपुर दीक्षित। युवा और विकास कार्यक्रम में हमारे सभी श्रोता साथियों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम श्रृंखला के इस भाग में हम चर्चा करेंगे साइबर अपराधों पर। दोस्तों, कहते हैं ना कि आज हमारी दुनिया के समानांतर एक और दुनिया बस गई है, वर्चुअल दुनिया। फेसबुक, ट्विटर और कुट पर बसी एक दुनिया। यहाँ लोग हमारी बातों को, हमारे काम को, हमारे विचारों को, हमारे फैसलों को सुनते हैं, देखते हैं, सराहते हैं और इन्हीं के आधार पर अपने मन में हमारे प्रति एक छवि गढ़ लेते हैं। हमारे साथ मजाक करते हैं, हमारे साथ हंसते हैं, हमारी किसी गलती पर गुस्सा व्यक्त करते हैं, हमारी यात्राओं के अनुभव सुनते हैं और वो सब कुछ जो अब तक हमारी भौतिक जिंदगी का हिस्सा हुआ करता था, आज कंप्यूटर जगत की इस वर्चुअल दुनिया का अभिन्न अंग बन गया है। साथियों, कभी कभी हम इस दुनिया के माया जाल में इस कदर और इतने उलझ जाते हैं कि अपनी निजता का ख्याल रखना ही भूल जाते हैं। बिना कुछ सोचे समझे अपने जीवन की इतनी सारी जानकारियां, इतनी सारी निजी जानकारियां यहाँ सामूहिक रूप से व्यक्त करते चले जाते हैं। साथियों, सोशल मीडिया पर होने वाली इन लापरवाहियों ने आज एक नया अपराध जगत रच दिया है, जो फिलहाल पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के सामने भी एक चुनौती है। तो आइए आज के कार्यक्रम में हम इन लापरवाहियों पर आधारित चंद प्रकरणों पर चर्चा करें और साथ मिलकर यह जानने की, यह समझने की कोशिश करें कि कैसे हम खुद को इस तरह के किसी अपराध का शिकार होने से बचा सकते हैं, कैसे हम खुद को इन लापरवाहियों को करने से, इन लापरवाहियों को दोहराने से बचा सकते हैं। दोस्तों, आम तौर पर हम सब लोगों की आदत होती है कि किसी भी यात्रा पर रवाना होने से पहले हम तुरंत अपनी फेसबुक प्रोफाइल में स्टेटस डाल देते हैं। बहुत सामान्य आदत है। कई बार विद्यार्थी हॉस्टल से घर, घर से हॉस्टल जाने के पहले, कहीं घूमने जाने से पहले, किसी की शादी में शामिल होने से पहले और यहाँ तक कि अब तो तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले भी अपना स्टेटस फेसबुक पर डाल देते हैं। ऐसा ही किया उत्तर प्रदेश के एक बहुत धनाढ्य परिवार के दो युवाओं ने। दरअसल ये लोग अपने परिवार के साथ तीर्थ यात्रा पर वैष्णो देवी मंदिर जा रहे थे। यात्रा पर जाने के दो दिन पहले से ही उस परिवार के युवा बेटे और बेटी ने अपनी फेसबुक प्रोफाइल में तमाम तरह के स्टेटस डालना शुरू कर दिया, जैसे अभी हम वैष्णो देवी जाने की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपेयरिंग फॉर वैष्णो देवी टूर, लगेज पैक, बैग पैक हो गया है, आई एम एक्साइटेड, मैं बहुत उत्साही हूँ कि मुझे वैष्णो देवी की यात्रा पर जाना है। और अंत में जब वो क्षण आया जब उनका परिवार अपनी ऑडी कार में बैठकर यात्रा के लिए रवाना हो रहा था, दोनों ने अपने अपने मोबाइल फोन से अपने घर वालों की तस्वीरें कार के साथ खींची और अपने अपने फेसबुक प्रोफाइल पर वो तस्वीरें डाल दी और लिख दिया बाय बाय। इसी बीच उनके बेटे की फेसबुक प्रोफाइल पर किसी परिचित मित्र ने कमेंट डाला कि आप सब वैष्णो देवी जा रहे हैं या कोई घर पर भी रहेगा। इस सवाल के जवाब में बेटे ने लिख दिया हम सब जा रहे हैं, कुछ दिन हमारा घर हमारे बिना अकेला रहेगा। दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि जब वो परिवार यात्रा से लौटा तो क्या हुआ। जब वो परिवार यात्रा से लौटा तो उनके घर का सारा सामान चोर साफ कर चुके थे। अब आप ही सोचिए कि घर पर कोई नहीं है, इस सूचना को सार्वजनिक करके किसने चोरों को अपने घर आने के लिए खुला आमंत्रण दिया। किसकी गलती थी यहाँ पर? कौन यहाँ अपनी यात्रा के बारे में बता रहा था? कौन बता रहा था कि कितने दिनों तक घर बंद रहने वाला है? दोस्तों, ऐसी ही एक अन्य लापरवाही दिल्ली की एक महिला शिक्षक ने भी की, जिसका खामियाजा उन्हें 1.25 लाख रुपए के नुकसान के रूप में भुगतना पड़ा। इस महिला से यह गलती हुई कि एटीएम मशीन से रुपए निकालने के बाद वो अपनी पर्ची को फाड़ना भूल गई और गलती से वो अपनी एटीएम स्लिप यानी एटीएम मशीन से रुपए निकालने के बाद आने वाली पर्ची उसी एटीएम में चली गई। उनके बाद कोई शातिर व्यक्ति उस एटीएम में घुसा और वहां पर उन्हें उनकी पर्ची यथावत मिल गई। आप जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? उस व्यक्ति ने सबसे पहले उस महिला का नाम पता किया। चूंकि वो उस महिला का चेहरा देख चुका था, उस नाम के आधार पर उसने इस महिला को फेसबुक पर तलाशा। इस शातिर व्यक्ति की किस्मत बहुत अच्छी थी कि फेसबुक पर उसे वो महिला मिल गई। अब ये व्यक्ति फेसबुक पर उस महिला के बारे में कई सारी जानकारियां हासिल करने लगा। मसलन वो कहाँ काम करती है। जैसे ही उसे पता चला कि वो महिला कहाँ काम करती है, उसे एक मोटा मोटा अनुमान लग गया कि इस महिला की मासिक आय कितनी और क्या हो सकती है। इसी दौरान फेसबुक के जरिए ही उस व्यक्ति को पता चला कि हाल फिलहाल वो महिला अपनी माँ का जन्मदिन मनाने की तैयारियां कर रही है। अब इस शातिर व्यक्ति ने एक साजिश रची। उस व्यक्ति ने चूंकि वो व्यक्ति महिला का चेहरा जानता था, उस महिला का नाम जानता था, उस महिला की फेसबुक को लगातार देख रहा था, तो कहीं से उस व्यक्ति ने उस महिला का मोबाइल फोन का नंबर पता किया और फिर खुद को बैंक कर्मी बताते हुए एक नकली टेलीफोन कॉल उस महिला के मोबाइल पे किया और उसे कहा कि मैं फला फला बैंक से बोल रहा हूँ, हम लोग कुछ तकनीकी जांच कर रहे हैं, हमें आपका एटीएम का पासवर्ड बता दीजिए। महिला को भरोसा हो जाए कि ये व्यक्ति फला बैंक से ही बोल रहा है, इसलिए उसने तुरंत उस दिन किए गए बैंक ट्रांजेक्शन का हवाला दे दिया कि फला फला तारीख को आपने फला फला एटीएम से फला फला रुपए निकाले थे, अब तो आप यकीन कर रही हैं कि मैं बैंक से बोल रहा हूँ। महिला को फौरन उस व्यक्ति पर यकीन हो गया। महिला ने उसे अपना पासवर्ड बता दिया, खुद अपने मुंह से अपना पासवर्ड बता दिया। दूसरी ओर उस शातिर व्यक्ति ने उस महिला के एटीएम का एक क्लोन एटीएम कार्ड तैयार करा। साथ ही साथ चूंकि उसे जानकारी थी कि फला तारीख को महिला अपनी माताजी का जन्मदिन मनाने जा रही है, तो उसने मोबाइल फोन कंपनी में एक अर्जी दी कि मेरे मोबाइल फोन चोरी हो गया है, कृपया मेरी सिम बंद कर दी जाए। और महिला का मोबाइल नंबर उसी महिला की मोबाइल सर्विस प्रदाता कंपनी के पास भेज दिया। क्योंकि एप्लीकेशन आई थी तो मोबाइल कंपनी ने उस महिला का मोबाइल फोन बंद कर दिया। मोबाइल फोन बंद था, महिला अपने घर में एक समारोह में व्यस्त थी। इसी बीच उस शातिर व्यक्ति ने उस महिला के बैंक अकाउंट से तकरीबन 1.25 लाख रुपए निकाल लिए। दोस्तों आप तो जानते ही हैं कि जैसे ही हम एटीएम से पैसे निकालते हैं, हमारे मोबाइल फोन पर तत्काल इस बात की सूचना आ जाती है कि हमारे बैंक अकाउंट से पैसे निकाले गए हैं। इस प्रकरण में महिला का मोबाइल फोन बंद था, लिहाजा ऑटोमेटिक सिस्टम के तहत उसके फोन पर एसएमएस तो गया, लेकिन महिला वो एसएमएस पढ़ ही नहीं पाई और महिला बहुत व्यस्त थी, लिहाजा उसका इस तरफ ध्यान ही नहीं गया कि उसका मोबाइल फोन आज बंद पड़ा है। जब वो अपने घर के समारोह से फ्री हुई, तब उसे ध्यान आया कि आज दिन भर में उसका मोबाइल नहीं बजा। जब उसने अपना मोबाइल देखा तो जाना कि भाई मोबाइल तो आज बंद है। उसने मोबाइल कंपनी से संपर्क किया, मोबाइल कंपनी ने बताया कि मोबाइल तो आपने बंद करवाया है। वो महिला मोबाइल कंपनी से बहस करने लगी और येन केन प्रकारेण कुछ घंटों में उसका मोबाइल वापस चालू हुआ। जब मोबाइल चालू हुआ तो तुरंत बैंक से एसएमएस आया जिससे उसे सूचना मिली कि उसके बैंक अकाउंट से रुपया निकाला गया है। आप सोचिए कितना बड़ा झटका लगा होगा उस महिला को। साथियों ये दोनों प्रकरण सत्य घटना पर आधारित हैं और दोनों प्रकरणों में पुलिस के हाथ साजिशकर्ता अपराधियों तक पहुंच चुके हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर मामले में साजिशकर्ता इन्हीं तकनीकों का इस्तेमाल करें और पुलिस उन्हें पकड़ने में कामयाब हो जाए। तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि तकनीकों ने जिस तरह हमारी जिंदगी को आसान बनाया है, उसी तरह एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे समक्ष खड़ी कर दी है कि हम कितनी सतर्कता से इन आधुनिक तकनीकों का, इन सुख सुविधाओं का उपयोग करते हैं। दोस्तों पिछले दिनों मध्य प्रदेश में साइबर अपराध के 2-3 मामले सामने आए जो लगभग एक जैसे थे। इस हर मामले में प्रेम में असफल किसी युवक ने उस युवती की नकली प्रोफाइल बना दी जिससे वो प्यार करता था और युवती उसके प्यार को अस्वीकार कर देती थी। इस युवक ने युवतियों की बड़ी बुरी, कहना चाहिए बड़ी गंदी और उन युवतियों की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली प्रोफाइलें बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दी और कई दिनों बाद युवतियों को इस बात की सूचना मिली कि सोशल मीडिया पर उनकी कुछ खराब प्रोफाइल यानी उनके बारे में कुछ गलत जानकारियां डाल दी गई हैं। आप सोचिए इस बीच जो लोग उन प्रोफाइल्स के संपर्क में आए होंगे और बदकिस्मती से ऐसे लोग जो इन युवतियों को जानते हैं वे इन प्रोफाइल्स के संपर्क में आए होंगे, तो उन्होंने इन युवतियों के बारे में कैसी छवि अपने मन में बनाई होगी। दोस्तों, ये तीन प्रकरण आपको सुनाने के पीछे मेरा मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि मैं आपसे कहूं कि आप इस कंप्यूटर, इस इंटरनेट की दुनिया से दूरी बना लीजिए, आप सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट पर जाना बंद कर दीजिए, आप लोगों से मेलजोल बातचीत बंद कर दीजिए। दरअसल आपको ये तीनों प्रकरण बताने के पीछे मेरा कारण ये था कि हमारी दुनिया में हमारे आसपास जो घटित हो रहा है उसकी चर्चा हम अपने कार्यक्रम के मंच पर करें। साथियों, मैं बस इतना चाहती हूँ कि इन प्रकरणों के बारे में जानने के बाद, इन प्रकरणों के बारे में सुनने के बाद, आप जब भी वर्चुअल दुनिया में अपने संबंध में कोई भी निजी जानकारी डालना चाहें तो पहले आप सतर्क रहें। एक बार सतर्कता से सोचें, इन वेबसाइट पे जब आप नए दोस्त बनाएं, अनजान लोगों से दोस्ती करें, तो एक दफा ध्यान से देखें कि आप क्या करने जा रहे हैं। दो बार सोचने के बाद ही कोई फैसला करें। दोस्तों, ये तमाम वेबसाइट जिनके बारे में हमने बात की, जो आज लोकप्रियता के शिखर पर पहुंच रही हैं, ये हर वेबसाइट अपने उपभोक्ता को यानी यूजर को कई तरह की प्राइवेसी सेटिंग करने का विकल्प देती है। यदि हम प्राइवेसी सेटिंग के विकल्प में जाकर इन तमाम सारी सेटिंग्स को अपने मुताबिक सेट करें, अपने मुताबिक ढालें, तो हमारी निजता वर्चुअल दुनिया में बहुत ज्यादा सुरक्षित रह सकती है। ये हम पर है कि हम अपनी प्रोफाइल की प्राइवेसी सेटिंग किस तरह से सेट करते हैं। जैसे आप चाहें तो आप अपनी तस्वीरों की सेटिंग इस तरह से कर सकते हैं कि सिर्फ आपके मित्र ही आपकी तस्वीरों को देख सकें। आप चाहें तो मित्रों में भी कुछ चुनिंदा मित्र ही आपकी तस्वीरों को देख सकें, ऐसी सेटिंग भी आप कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने ही मित्रों का एक अलग से क्लोज ग्रुप बना सकते हैं ताकि वह क्लोज ग्रुप ही आपकी तस्वीरें, आपकी स्टेटस को पढ़ सके। दोस्तों, एक और बात का हम सभी को ध्यान रखना चाहिए कि फोन पर किसी अनजान व्यक्ति को अपनी निजी जानकारियां कभी नहीं देनी चाहिए। और याद रखिए, कोई भी बैंक कभी भी अपने ग्राहकों से उनके एटीएम का पासवर्ड नहीं मांगती। बैंक की पासबुक और बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली ई बैंकिंग की किट पर भी ये निर्देश स्पष्ट अक्षरों में लिखा होता है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा पूछे जाने पर आप उसे अपने अकाउंट का पासवर्ड या पिन नंबर ना दें, फिर चाहे वो व्यक्ति हमारे ही बैंक का कर्मचारी ही क्यों न हो। अब आप देखिए, बैंक तो कितनी जिम्मेदारी से अपना काम कर रही है, आपको सतर्क कर रही है, आपको आगामी खतरे के प्रति आगाह कर रही है, और हम और आप हैं जो अक्सर इन बातों को भूल जाते हैं। साथियों, मैंने एक बात महसूस की है कि कोई तकनीक चाहे कितनी भी नई क्यों न हो, चाहे कितनी भी आधुनिक क्यों न हो, इंसान की सोच यदि तार्किक हो तो वो अपने जीवन में कई तरह की कठिनाइयों से बच सकता है। आपको बचपन में दी हुई दादी नानी की वो सीख तो शायद याद होगी, जब वो कहती थी कि अनजान लोगों के पास नहीं जाना, अनजान लोगों से दोस्ती नहीं करना, अनजान लोगों की दी हुई चीजों को नहीं लेना, वगैरह वगैरह वगैरह। दोस्तों, आज की दुनिया में सोशल वेब नेटवर्किंग साइट्स और साइबर दुनिया में हो रहे ज्यादातर अपराधों का कारण इन्हीं छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करना है। दोस्तों, इंटरनेट आज के जमाने की एक बड़ी आवश्यकता बन चुका है। इससे यदि हम दूर रहना चाहें तो हम समाज की मुख्यधारा के साथ कदम ताल नहीं बना पाएंगे, समाज के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल पाएंगे। लेकिन ये भी जरूरी है कि यहाँ हम कुछ सतर्कताएं रखें। सतर्कता इंसान की एक बहुत बड़ी ढाल होती है जो उसे कई तरह की कठिनाइयों से बचाती है, सहेज कर रखती है, संरक्षित करती है। नजारे बदल जाते हैं, परिस्थितियां बदल जाती हैं, लोग बदल जाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति सतर्क होता है वो हमेशा खुद को कितनी भी कठिन परिस्थिति से बचाकर बाहर ले आता है। तो साथियों, सूचना के इस नए माध्यम यानी इंटरनेट को अपनाइए, इसका इस्तेमाल कीजिए, इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानिए, लेकिन कुछ सावधानियों के साथ। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि युवा और विकास कार्यक्रम का ये हिस्सा आपको पसंद आया होगा, और मैं उम्मीद करती हूँ कि अगली बार जब आप इंटरनेट पर किसी अनजान व्यक्ति के संपर्क में आएंगे, इंटरनेट पर किसी अनजान व्यक्ति से बातें करेंगे, तो अपने हिस्से की सतर्कता जरूर बरतेंगे। जब भी आप एटीएम से पैसे निकालेंगे तो पर्ची को जरूर फाड़ कर इस तरह से डिस्ट्रॉय कर देंगे, खत्म कर देंगे कि कोई और उस पर्ची में लिखी हुई सूचना को हासिल ना कर सके। और किसी अनजान व्यक्ति से फोन पर बात करते हुए अपनी कोई निजी जानकारी कभी नहीं देंगे। तो साथियों, अब अपनी दोस्त नूपुर को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।